very life experience of mine. I belong to Delhi. So Delhi mein hum ek bari Dr. Abdul Kalam ji se milne ke liye gaye, and there was a senior sister of mine along with me. So unse jab hum mil rahe the to unke PS aaye aur unhone khud ko introduce kiya ki main unse phone pe baat hoti thi lekin kabhi milna nahi hua tha PS se. To jab unse mile to unhone khud hi introduce kiya ki main inka PS hu. To jab introduce kiya तो अब्दुल कलाम जी ने एकदम से कहा, ही इज नॉट माय पीएस, ही इज द पिलर ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माय ऑफिस. आप सोचिए ये उस व्यक्ति के लिए कितनी बड़ी गर्व की बात होगी कि एक ऐसा व्यक्ति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट टाइम इज सेइंग कि ये इस ऑफिस का पिलर है. यहां पर दो चीजें अपने आप दर्शाई गई, एक हम्बलनेस ह्यूमिलिटी जो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दिखाया और एक हार्ट विनिंग नेचर जो कि उनके पीएस ने दिखाया. तो बोथ एंड्स पर आप देख सकते हैं कि अगर एक तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है तो दूसरे एंड पर उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा. अनदर अ वेरी लाइव एक्सपीरियंस ऑफ माइन, एक कंपनी में हमारा जाना हुआ एंड आई मेट अ पर्सन, ही इज अ जीएम ओवर देयर. तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा भाई साहब कितने साल हो गए आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ही वेरी प्राउडली सेड सिस्टर 30 इयर्स. मैंने कहा 30 साल? कहते हाँ जी 30 साल. मैंने कहा इसी में ही या कहीं और चेंज कर करके? कहते नहीं इसी ऑर्गेनाइजेशन में 30 इयर्स. मैंने कहा कमाल कर दिया भाई साहब, आजकल कोई एक साल नहीं काम करता, आपने 30 इयर्स कैसे काम किया. एंड ही टोल्ड हिज स्टोरी. कहते हैं जब मैं रिसेंटली ज्वाइन किया इस ऑर्गेनाइजेशन को, उस टाइम पर ज्वाइन करते ही मेरा कोई जानता नहीं था, तो चेयरमैन ऑफ द कंपनी केम और उन्होंने हम सबको एड्रेस किया. कहते हम 75 लोग थे जिन्होंने इकट्ठा कंपनी को ज्वाइन किया था, और चेयरमैन आए, उन्होंने सबको एड्रेस किया और सबका ऐसे वेल इंट्रोडक्शन हुआ. तो उसमें मेरा नाम रवि आया, अनाउंस्ड माय नेम कि रवि है मेरा नाम. कहते बात खत्म हो गई, एड्रेस किया चले गए. दो दिन के बाद मैं अपनी सीट पर जा रहा था, चेयरमैन साहब आए और उन्होंने रास्ते चलते मेरे को देखा. मैं साइड पर हो गया लेकिन उन्होंने मुझे बाहर बुलाया और मेरी पीठ पर 3 बार पैट करके बोला, रवि शाबाश, अच्छा काम करना. कह रहे 3 बार पैट किया, उस 3 पैट का मैंने 30 साल का रिजल्ट उनको दिया. किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ 30 साल तक जुड़ करके रहना, ये अपने आप में दिखाता है कि आपका उस व्यक्ति के ऊपर कितना फेथ, उस व्यक्ति की कितनी ह्यूमिलिटी और कितना हार्ट विनिंग नेचर. तो इस सेशन को और प्रकाशित करेंगे, हमारे बीच में कविता बहन है, तो हम आपसे ही सुनते हैं. ओम शांति. आई एम सो सॉरी. देखिए एक और ह्यूमिलिटी की ट्रेंड. हमारे बीच में सिस्टर आए हैं, आप सिस्टर कविता का वेलकम कर रहे हैं बाय बुके एंड बाय बैज ऑल्सो. ताली बजा दीजिए, एक्सरसाइज ही हो जाएगी. ये तो हाइट्स ऑफ ह्यूमिलिटी है.
ओम शांति. गुड इवनिंग. कल से लेकर आज तक जो स्पिरिचुअल जर्नी हमने स्टार्ट की है, हम उस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. क्योंकि जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आप कहीं एक लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं, तो आप अपने आप को इक्विप करते हैं उस लॉन्ग ट्रिप के लिए, एंजॉय करने के लिए. तो हम शेयर कर रहे थे कि जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम अपने आप को फुल्ली इक्विप करते हैं कि लॉन्ग जर्नी है तो हम इतना प्रबंध अपने साथ रखते हैं, कई प्रकार से हम पैसे भी उतने रखेंगे कि इतना हम यहाँ यहाँ जाएंगे, इतना एक्सपेंड करेंगे, हर रीति से. जैसे जैसे जर्नी बढ़ती जाती वैसे वैसे पॉकेट से खर्च होता जाता होता जाता होता जाता. एंड बिकॉज इट इज अ लॉन्ग ट्रिप, एक पॉइंट ऐसे आता कि अभी यात्रा का और समय बाकी है और हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. अब कहीं तो उस पॉइंट पर भी अलर्ट हो जाते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, अभी हमें उसे कैसे मैनेज करना है. कई हैं जो उस समय पर भी स्पेंड करते हैं, सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बाय द टाइम आई रीच माई डेस्टिनेशन उतने मेरे पास है, फंड्स हैं. कई हैं फिर बोरो करने लगते हैं, मना इंडेटेड हो जाते हैं. तो इस प्रकार से जब एक लॉन्ग ट्रिप हम स्टार्ट करते हैं, रिसोर्सेज हमारे यूज होते जाते एंड ड्यूरिंग द ट्रिप अगर हम अपने आप को, हमारे रिसोर्सेज को बढ़ाते नहीं है, सो वी रीच अ पॉइंट जहां पर हम फील करते हैं कि अब वी गो इनटू अ स्टेट ऑफ डेट. इसी प्रकार से वास्तव में हम सभी की जीवन रूपी यात्रा भी एक बहुत लंबी यात्रा रही है. आज मॉर्निंग सेशन में हमने देखा कि कैसे वी आर अ स्पिरिचुअल एंटिटी, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को हमने एक्सपांड किया. आप में से कितनों ने मॉर्निंग सेशन रियलाइजिंग द सेल्फ पे अटेंड किया? वॉज अ ब्यूटिफुल सेल्फ डिस्कवरी, वॉजंट इट? तो ये जर्नी, हमारी इटर्नल जर्नी जब हमने शुरू की तो हमारी उस जर्नी की शुरुआत में भी हम बहुत प्योर बीइंग्स, हमारा जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ प्योरिटी थी, हमारी जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ वर्च्यूज, जो हमारा ओरिजिनल कोर ऑफ एग्जिस्टेंस है, उससे हमने शुरू की. लेकिन जैसे यात्रा में आगे बढ़ते गए तो हम खर्च भी करते गए. फिर एक समय ऐसा आया कि जहां पर हमारी सारी क्वालिटीज, सारी वर्च्यूज हमने कंप्लीटली स्पेंड कर दिए. और फिर उस समय पर, बिकॉज द जर्नी डिड नॉट कंप्लीट, फिर हमने इन्फ्लुएंस होने दिया अपने आप को कई प्रकार की नेगेटिविटी से. और फिर हमें लगने लगा कि दीज आर द टूल्स विच आई कैन यूज टू फर्दर कंटिन्यू द जर्नी. और ऐसे समय पर हम एंगर यूज करने लगे, हम ईगो यूज करने लगे. आज का टॉपिक वी टॉक अबाउट विनिंग हार्ट्स, लेकिन आज के जीवन में अगर इंसान से पूछ ले व्हाट आर यू प्लानिंग टू विन, तो क्या कहेंगे? दिलों को जीतने की बात तो शायद दूर रह जाती, लेकिन क्या क्या जीतने में लगे रहते? कोई पैसे कमाने में, कोई वोट्स जीतने में, कोई लाइक्स जीतने में. आज का करंट ट्रेंड है, मैंने कोई पोस्ट किया और मुझे कितने लाइक्स मिले. लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मुझे लोगों के दिलों को भी जीतना है. तो आज हम एक जर्नी जो कर रहे हैं, उस जर्नी को हम एक्सप्लोर करेंगे. वेयर एम आई ऑन द जर्नी ऑफ माई लाइफ, अपनी जीवन रूपी यात्रा में मैंने कौन कौन सी बातों को प्रायोरिटी दी है और कौन कौन सी बातें मैंने खो दी थी जो फिर से मुझे रीगेन करना है, बिकॉज दीज आर इसेंशियल टू दी क्वालिटी ऑफ माई बींग. मुझे किसी और के लिए नहीं करना, क्या आपको लगता है कि ह्यूमिलिटी अपनाना, नम्रता को अपनाना, मानो दूसरों के लिए हम कोई फेवर कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमिलिटी बिकॉज आई वॉन्ट टू टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ ह्यूमिलिटी इन माई लाइफ। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मन को कुछ थॉट्स देते हैं, अपने मन को एक साइलेंट रिफ्लेक्शन की ओर ले जाते हैं, बिकॉज लेट अस ऑल फोकस ऑन व्हाट इज देयर विद इन माई बींग, ताकि हम उसको चेंज कर सकें। तो क्या हम 2-3 मिनट एक सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं, माइंड को फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं इस समय मेरे मन में क्या और कैसे चल रहा है? बिकॉज इफ वी डोंट आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू बी सीटेड स्ट्रेट, रिलैक्स्ड। शाम का समय बहुत अच्छा समय है अपने आप को फोकस्ड रखने के लिए। आइए हम खुद से खुद की मुलाकात करते हैं कुछ मिनटों के लिए। ऑल डायरीज, पेन्स, बुक्स, मोबाइल्स, बैग्स, पर्सेस, जो भी आपके हाथ में है, अपने पास एक कंफर्टेबल स्पेस रख दीजिए। स्पेस फाइंड करके उन चीजों को रख दीजिए। अपने आप से बहुत कंफर्टेबल फील कीजिए और अपने जीवन रूपी यात्रा को देखते हुए अपने ही मन को देखते हैं। माइंड जो मेरा बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है, देखिए इन द प्रेजेंट मोमेंट मेरे मन में जो थॉट्स चल रहे हैं, इनकी स्पीड क्या है? ऑब्जर्व द स्पीड ऑफ योर थॉट्स। स्पीड के साथ साथ इन थॉट्स की क्वालिटी को भी चेक करेंगे। कौन सी क्वालिटी के थॉट्स चल रहे हैं? क्या मेरे माइंड में टर्बुलेंट थॉट्स हैं, थॉट्स ऑफ हेट्रेड, नफरत, वैर भावना है, या प्यार, रहम और स्नेह को मेरे मन में स्थान है? बहुत ही डिटैच्ड और सच्चे होकर अपने आप को हम देखेंगे। क्या मेरे मन में खुशी और निश्चिंतता के विचार हैं, या मेरे मन में स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं, पेनफुल थॉट्स हैं? क्या वो स्मृतियां मन में हैं जो मुझे लाइट और हैप्पी फील कराती है, या वो सीन्स मन में इमर्ज होते जिससे मुझे अफसोस होता? अपने जीवन से कुछ पलों के लिए स्टेप बैक करें, ऑब्जर्व करें अपनी जीवन रूपी यात्रा को। और इसे एक नई दिशा, एक नया मोड़ देने का संकल्प अपने मन में करें। ओम शांति। तो आज जो बातें हम आपस में शेयर करेंगे, दीज विल जस्ट बी गाइड्स और साइन पोस्ट्स ऑन दी जर्नी ऑफ आवर लाइफ। जैसे मान लीजिए हमको यात्रा कर रहे हैं और अगर हमने साइन पोस्ट गलत फॉलो कर लिया तो क्या डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे? पहुंच पाएंगे? वी विल हैव टू रीट्रेस आवर स्टेप्स और जहां से हमने गलत साइन पोस्ट को फॉलो किया था वहां से हमें अपनी जर्नी को करेक्ट करना होगा ताकि हम अपने जीवन के जो यात्रा के जो डेस्टिनेशन है उसको पहुंच सके। ठीक इसी प्रकार से अपनी जीवन रूपी यात्रा में भी मुझे चेक करना है कि कहीं कोई गलत साइन पोस्ट्स को तो मैंने फॉलो नहीं कर लिया, कहीं मैंने ये तो अंदर में मानना शुरू तो नहीं कर लिया कि हाँ थोड़ा तो अभिमान दिखाना पड़ता, कहीं मैंने सेल्फ एस्टीम को ईगो के साथ रिप्लेस तो नहीं कर दिया। और वही बातें हम आज आपसे शेयर करेंगे एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू शेयर दीज थिंग्स विथ यू बिकॉज हम ऐसा मानते हैं कि आप सभी की प्रेजेंस ने हमें भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, द जर्नी वेर वी मूव फ्रॉम ईगो टू ह्यूमिलिटी, उस जर्नी में मुझे बहुत हेल्प किया है और इसीलिए एज आई बिगिन दिस जर्नी मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स देना चाहती हूँ बिकॉज योर प्रेजेंस हैज हेल्प्ड मी ऑन माई जर्नी टू। सबसे पहले अगर हम इसका एक अंदाजा ले कि ह्यूमिलिटी ये क्वालिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, आई शेयर द एसेंस दैट द फाउंडर फादर ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज शेयर्ड एज इज फाइनल मैसेज टू ऑल ऑफ अस स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स। आफ्टर 33 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, आफ्टर 33 ईयर्स ऑफ इंटेंस तपस्या, अपने आप पर मेहनत करने के लिए, इतने जीवन को प्रेरणा देने के लिए, जिनको हम बहुत रेवरेंस से रिगार्ड से प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, आप देख रहे हैं उन्होंने जिस मैसेज के साथ हमें छोड़ा, हिज फाइनल लेसन टू अस वॉज इन थ्री वर्ड्स। और वो थ्री वर्ड्स को अगर हम देखें, वो तीन शब्द थे, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। निराकारी वो टीचर्स दैट हमें अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस को नेचुरल बनाना है। निर्विकारी का ये मीनिंग था कि जो हम सभी की ओरिजिनल स्टेट ऑफ प्योरिटी है, उस ओरिजिनल स्टेट ऑफ प्योरिटी को हमें रीडिस्कवर करना है। एंड द थर्ड वर्ड वॉज निरअहंकारी, अर्थात जो हमारी नेचुरल बीइंग ऑफ ईगोलेसनेस है। जैसे किसी बच्चे को देखें, बच्चे कैसे होते हैं ना, नेचुरली इनोसेंट होते हैं, नेचुरली बहुत ही ईगोलेस होते हैं। तो जैसे उस बच्चे की नेचुरल स्टेट ईगोलेस है, वैसे हम सभी की भी नेचुरल स्टेट बहुत ईगोलेस, बहुत हम्बल है। तो द थर्ड वर्ड विच ही लेफ्ट अस विथ वॉज निरअहंकारी, अर्थात जिसमें कोई अहंकार, कोई ईगो ना हो। तो मैं सोच रही थी कि इतने वर्षों के विभिन्न प्रयोगों के बाद जब उस एसेंस की ओर आते हैं तो उस एसेंस में एक वर्ड निरअहंकारी है, अर्थात द वैल्यू ऑफ ह्यूमिलिटी हमारे जीवन में कितनी ना इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इसका लिटरल ट्रांसलेशन देखते हैं, इट्स निर्मानता, ह्यूमिलिटी अर्थात नम्रता कह सकते, विनम्रता कह सकते, निर्मानता कह सकते हैं। निर्मान अर्थात जिसको किसी से मान पाने की इच्छा नहीं है। हमें अपने आप को चेक करना है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के बाद क्या मुझे वो डिजायर फॉर रिकग्निशन रहता है, क्या मन में वो इच्छा रहती है कि लोगों को पता चले कि ये काम किसने किया, क्या ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है जो हमसे कहते हैं कि आपको पता है ये काम किसने किया, मिले हैं ऐसे लोगों से, हमें अपने आप को भी देखना है। मान लीजिए हमने बहुत अच्छा काम किया एंड दैट गोज अनमेंशनड, अननोटिस्ड, किसी ने कहा नहीं कि ये काम किसने किया, इन्होंने किया, व्हाट गोज ऑन इनसाइड, व्हाट गोज ऑन इनसाइड, हर्ट, क्या लगता, इतना मेहनत किया, कोई रिकग्निशन देने वाला ही नहीं, और क्या संकल्प चलता हाँ, अभी नहीं एक्सप्रेस करेंगे, अच्छा इस वातावरण में वो बातें नहीं करेंगे, वो बातें वहां करेंगे जब वो चीजें हाँ होती हैं। वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स, क्योंकि यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि मुझे डिजायर हो कि जो मैं करती हूं लोगों को पता चले, जो मैंने किया या तो मेरे नाम की तख्ती लग जाए, या तो मेरे नाम से अनाउंसमेंट हो जाए, या तो मैं ही सभी के साथ शेयर करूं कि पता ये अचीवमेंट होने के पीछे किसका हाथ है, मैं खुद ही पब्लिसिटी करता रहूं करती रहूं कि ये कार्य किसने किया। There is another aspect, another dimension to this story. मान लीजिए मैंने बहुत अच्छा कार्य किया और मैंने किसी को कहा भी नहीं कि ये काम मैंने किया, क्या लोगों को दिखाई नहीं देगा कि क्या हो रहा, क्या हुआ? हम तो साइलेंट रहे, लेकिन अब कौन बोलेगा, अब कौन बोलेगा, अब लोग पूछेंगे क्या आपको पता है ये काम किसने किया, आपको नहीं पता वो आपसे पूछेंगे क्या आपको पता है ये काम किसने किया, और करते करते देयर विल बी अ डिस्कवरी आखिर कि ये काम किसने किया। सो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हमें चूज करना है व्हाट डू आई गो विथ, या तो मैं लोगों से पूछूं पता है किसने किया, या तो लोग आपस में एक दूसरे से पूछे किसने किया आपको पता है, विच इज द बेटर ऑप्शन, विच इज द बेटर ऑप्शन, ए या बी, पहला या दूसरा, और हम करते क्या हैं? इसीलिए कहते हैं कि कच्चा फल खट्टा होता है, और जब फल पक कर तैयार हो जाता तो वो मीठा होता है। तो मुझे देखना है कि कहीं भी आई हैव टू बी ट्रू टू माई पर्पज, जब भी हम कोई कार्य करते हैं सो वो कार्य मैं क्यों कर रहा हूं, या वो कार्य मैं क्यों कर रही हूं, वो कार्य मैं इसीलिए नहीं कर रही हूं कि मुझे अपनी पब्लिसिटी करनी है, अपनी क्वालिटीज का बयां करना है, अपने आप को प्रमोट करना है, अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, नहीं। जब मैं कोई कार्य कर रही हूं मैं वो कार्य इसीलिए कर रही हूं बिकॉज आई हैव टू यूज माई एबिलिटीज, माई रिसोर्सेज, और कौन से रिसोर्सेज, द रिसोर्स ऑफ माई एबिलिटी, द रिसोर्स ऑफ माई टाइम, द रिसोर्स ऑफ माई स्किल्स, द रिसोर्स ऑफ माई थॉट्स, और इन सभी को मैं कितना सुंदर तरीके से यूज करती हूं और अपने कार्य को जस्टिफाई करती हूं, उस सेटिस्फैक्शन के लिए मैं ये कार्य कर रही हूं, एंड व्हेन आई एम ट्रू टू माई पर्पस वो कार्य बहुत अच्छी तरह से सफल भी होता है। तो जो कार्य मैं कर रही हूं हमें रीडिफाइन करना है, मैं किसी के अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट के लिए नहीं कर रही हूं, पर वो कार्य मैं इसीलिए कर रही हूं बिकॉज आई हैव टू यूज माई एबिलिटीज, माई रिसोर्सेज टू द बेस्ट इफेक्ट। और जब हम ये कर लेते हैं तो हमें इतना सेंस ऑफ कंटेंटमेंट मिलता है वो कार्य करने के बाद कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन द एप्रिसिएशन ऑफ समबडी टू फुलफिल माई नीड। मैं मुझे वो इच्छा ही नहीं है, मान की इच्छा ही नहीं है, निर्मानता। और जब हम ऐसे निर्मान बनते हैं इट इज अ स्टेज ऑफ विक्ट्री ओवर अभिमान, क्योंकि अभिमान के लिए किसी ने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई कि अभिमान का मतलब क्या है, कि कि जो बात मैं कहता हूं या मैं कहती हूं वो बात अभिमान, अभी अभी मान इज इक्वल टू अभिमान। और अपने आप से पूछे, कोई आपको फोर्स कर दे या कोई आपको कहे कि जो मैंने कहा वो आपको करना है, कितनी बार करेंगे? एक बार मैंने कहा आप ऐसा करो, चलो पहली बार आपने कर लिया, फिर कुछ देर बाद, कुछ समय बाद फिर मैं कहूं अच्छा अभी ये करो, चलो सेकंड टाइम भी कर लिया, फिर थर्ड टाइम मैं कहूंगी अच्छा अब ऐसे करो, अब क्या सोचेंगे? हर बार वही करूं जो आप कहते हैं। तो हम क्या हमेशा किसी की बातों को मानना चाहते हैं? तो क्या हम अपनी बात किसी के ऊपर हमेशा एनफोर्स कर सकते हैं? सो ह्यूमिलिटी इज द आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग डिफरेंसेस। ह्यूमिलिटी का मतलब ये होता है कि जो मेरी सोच है उससे आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है, बट इट डज नॉट मैटर। ये हम फोर्स नहीं कर सकते हैं कि जैसा मैं कहती हूं वैसा ही हर समय होता रहे या होना चाहिए। सो दिस इज अ स्टेट, अ वेरी लविंग स्टेट, कि जब हम हम्बल रहते हैं, हम ईगोलेस रहते हैं, तो हमें लोगों को ये नहीं कहना पड़ता कि आप हमारी बात को मानो, लेकिन सामने वाले लोगों को होता है कि इनको अगर ऐसी बात इनके मुख से निकल गई तो मुझे इस बात को फॉलो करना है। माना दे गिव वेटेज टू व्हाट वी स्पीक। हमें याद आता है ब्रह्मा कुमारी की, जिनको हम बहुत प्यार से दादी प्रकाशमणि जी कहते हैं। शी वॉज आवर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड फ्रॉम 1969 टू 2007। माना ब्रह्मा बाबा के बाद दादी जी ने ब्रह्मा कुमारी के एक्सपेंशन के लिए निमित्त बने। शी मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एज अ लविंग मदर वो बहुत प्यार से सभी की नीड्स को या सभी की दिल की बातों को पूरा करती थी। कभी बारिश का दिन होता, हमें याद आता, क्योंकि एज अ लविंग मदर, जैसे माँ को कभी दिल हो जाता कि आज मैं अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए ये बनाऊं ये बनाऊं, इसी प्रकार से मान लीजिए एक सभा लगी है और क्योंकि मौसम ठंडा है, दादी जी को दिल में उसी समय उमंग आता कि अभी सभी को आज थोड़े समय के बाद, जैसे ही क्लास पूरी होती वैसे सभी को हलवा खिलाया जाए। और जिन्हों को वो चीज बनानी है उनको दादी जी के उस शब्द के प्रति इतना रिस्पेक्ट रहता, इतना रिगार्ड रहता, वो ये नहीं सोचते कि अभी आधे घंटे में इतनों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी है, पर क्योंकि दादी के मुख से वो बात निकली है, उनके भी दिल से आता कि इस चीज को मुझे करना है और सभी को वो पहुंचाना है। सो एक है मैं एनफोर्स करूं कि जो मैं कहूं लोग माने, और दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग है कि अगर कभी मुख से बात निकली तो लोगों के दिल में हो कि इस बात को मुझे फॉलो करना है। सो ह्यूमिलिटी, निर्मानता, अर्थात वो अवस्था जहां मुझे रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, जहां कोई के एक्नॉलेजमेंट की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे किसी पर अपने विचारों को एनफोर्स करने की जरूरत नहीं है, बट पीपल नेचुरली हैव दैट रिगार्ड, दैट रिस्पेक्ट टू फॉलो। फिर कई लोग कहते हैं अच्छा बस हमें हमेशा हम्बल ही रहना है, हमें ही हमेशा निर्मान रहना है। कभी कभी तो क्या करना पड़ता, क्या करना पड़ता, मन में ख्याल आता कि हमेशा ऐसे मीठा मीठा बोल नहीं सकते, हमेशा ऐसे मीठा मीठा चल नहीं सकते, कभी तो ईगो को भी यूज करना पड़ता, या कहीं सोचते ह्यूमिलिटी इज इक्वल टू सबसर्वियंस। भाई हम तो हमेशा दबे ही रहेंगे, हम तो हमेशा मरते ही रहेंगे, हम ही हमेशा हम्बल रहे, हम ही हमेशा झुकते रहे, तो काम कैसे चलेगा? कभी कभी हम झुके तो कभी कभी होता है ऐसे, कभी मैं तो कभी किस बात में किस बात में निर्माण बनने में हम अपने बिहेवियर को कंडीशन कर देते हैं कि एक बार मैंने लेट गो किया, एक बार मैंने झुका, तो दूसरी बारी किसको झुकना है, दूसरी बारी किसको झुकना है, मुझको ही। बोल नहीं रहे हैं सामने वाले को, पहली बार मैंने किया तो दूसरी बार दूसरे को, अच्छा दूसरी बार उसने नहीं किया तो, अच्छा कम से कम तीसरी बार तो वो झुके, अच्छा तीसरी बार भी नहीं तो अब क्या हो गया, अब तो मैंने ऐसा स्टैंड पकड़ लिया कि हर बार किसको झुकना, मुझको ही झुकना, मुझको ही मरना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो चल ही नहीं सकता। मतलब मैंने अपने बिहेवियर को किस पर कंडीशन किया, उसके बिहेवियर पर मैंने अपने बिहेवियर को कंडीशन कर दिया। पर एक्चुअली ह्यूमिलिटी एक इतनी स्वीट क्वालिटी है कि जहां पर हमें दूसरों के बिहेवियर को देखने की या उनके रिएक्शंस पर, उनके रिस्पांस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्माणता अर्थात पुटिंग पीपल फर्स्ट, जहां हम दूसरों की जरूरतों को, दूसरों की आवश्यकता को अपनी जरूरत, अपने कंफर्ट और अपनी आवश्यकता के आगे रखते हैं। पुटिंग पीपल फर्स्ट, अगर कोई कंफर्ट है आपको मिलता है तो आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ समय से हम स्वयं ही अपने लाइफ में एक ऐसा एफर्ट कर रहे हैं। हमने बहुत सुंदर बात पढ़ी थी कि वी नीड टू बी जेनरस विथ आवर टाइम। द मैसेज वॉज कि जैसे हम किसी किसी चीज की, जो भी हमारे रिसोर्सेज है, उसका एक बजट बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ धन है तो उस धन के भी एक्सपेंडिचर का एक बजट होता है, और अधिकतर लोग अपने उस बजट में ऐसा फॉर एक्ट्स ऑफ नोबिलिटी, फॉर एक्ट्स ऑफ जेनरोसिटी, फॉर एक्ट्स ऑफ चैरिटी एक परसेंटेज रखते हैं कि ये यहाँ खर्च होगा और इतना परसेंटेज जो है दिस विल बी फॉर एक्ट्स ऑफ चैरिटी, अपना बजट बनाते उतना उसके लिए रखते हैं। इसी प्रकार से हमने ये पढ़ा कि वी शुड कीप सम मार्जिन ऑफ आवर टाइम फॉर अदर पीपल टू यूज इन अ बेनिवोलेंट वे, किसी को हेल्प करने के लिए, किसी को कोऑपरेट करने के लिए, किसी के मन की जिज्ञासा को सैटिस्फाई करने के लिए, किसी के साथ अपने जीवन का बहुत प्योर पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई शुड हैव सम टाइम अवेलेबल। बी जेनरस विथ योर टाइम। और जब से ये बात पढ़ी इट स्ट्रक माय माइंड, और उसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एंड द रिजल्ट्स हैव बीन एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके कार्य में हम स्वयं हेल्पफुल हो सकते हैं, सो व्हाई नॉट। इनफैक्ट अभी हम स्टार्ट किए हैं कि लेट मी कीप सम बजट, सम अमाउंट ऑफ माय टाइम फॉर अ पर्पस, जो ये टाइम मेरे अपने लिए नहीं है, लेकिन एनीबडी आई मीट अराउंड, कोई साथी है, कोई भी है, उनके लाइफ में अगर मैं अपना टाइम देकर हेल्पफुल हो सकूं, लेट मी डू दैट। तो ह्यूमिलिटी का मतलब ये होता कि हम लोगों के लिए कुछ करें, अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा उनकी आवश्यकता को रखें। एंड देन इन द नीड ऑफ माई आर ऑफ नीड क्या होगा, जब मुझे आवश्यकता होगी तो मुझे लोगों की मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई लोग ऐसे होते हैं, मान लीजिए आपको साइलेंस प्रिय है, यू लाइक टू बी इन साइलेंस, आपको एकांत में रहना पसंद है, और अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, इट इज गुड टू हैव टाइम इन साइलेंस, इट इज गुड टू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर लोग आए जाएं तो उनको पसंद नहीं आता, वो सीधा बोल देते हैं स्टर्नली, आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? पहली बार कहा, दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, अब चौथी बार कोई आएगा? कोई आएगा आपके पास? क्यों? क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? हाँ, कि मैं जाऊंगा तो वो डिस्टर्ब होंगे, वो डिस्टर्ब होकर मुझे कुछ कहेंगे तो मैं भी, इसीलिए छोड़ो, वहां मुझे जाना ही नहीं है। और कोई है जो अपना कार्य कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं अनहिंडर्ड, अनबॉदर्ड। हाँ ठीक है, वो अपना काम कर रहे, मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूं। अगर वो आकर कोई डिस्टर्बिंग एक्ट भी करते हैं तो बहुत जेंटली कह देते कि आप हम भले आइए करिए, बट थोड़ा सा अगर ऐसे मेंटेन करेंगे साइलेंस तो मैं भी अपना काम अच्छी तरह से कर पाता हूं। तो कम्युनिकेट भी किया लेकिन बहुत ही प्यार से। तो आज उसके पास लोगों का आना जाना होगा या नहीं होगा? तो समय पर मुझे देखना है, विल पीपल कम क्लोज टू मी जब मुझे जरूरत है, या लोग मुझसे दूर जाएंगे और समय पर कोई मेरी मदद के लिए हाजिर नहीं होगा। सो ह्यूमिलिटी इज दैट एसेंस कि जहां पर वी अलाउ पीपल टू कम क्लोज टू अस। और इसीलिए कहते हैं एक हम्बल व्यक्ति जो होता है लोग उसके करीब आते हैं, उसके पास आना पसंद करते हैं, उसकी प्रेजेंस एक बहुत ही कंफर्टेबल, एक बहुत ही कॉर्डियल, एक बहुत ही स्मूथ एनवायरनमेंट बिल्ड करती है। सो इसीलिए हमें देखना है कि व्हाट आई डू इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग वेव्स, इट स्टार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग द वे पीपल डील विथ मी। और इसीलिए कहा द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिलिटी इज द प्रोसेस ऑफ डिसमेंटलिंग द ईगो, बिकॉज ह्यूमिलिटी एक बहुत एक्सप्रेशन ऑफ प्योरिटी है, द प्योरिटी विच इज एट द कोर ऑफ आवर बीइंग। उस प्योरिटी का एक्सप्रेशन जब हमारे विजन में होता, जब हमारे कर्मों में होता, तो लोग उसको देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्ट्स ऑफ ह्यूमिलिटी। तो हमारी इस प्योरिटी को कौन सी इम्प्योरिटी लग गई? ओरिजिनली जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी तो ह्यूमिलिटी थी, बहुत सारे वर्च्यूज थे, प्योरिटी थी, लेकिन कौन सी इम्प्योरिटी लग गई अभी? What has tainted our humility? जिसको कहते हैं ego। एक ऐसे समाज की आप कल्पना करें कि जहां पर किसी भी व्यक्ति में ego नहीं है, कल्पना कर सकते हैं? नहीं? Imagine तो कीजिए। इमेजिन अ सोसाइटी, इमेजिन अ सिस्टम, इमेजिन अ टीम, इमेजिन अ ग्रुप ऑफ पीपल जहां पर किसी में भी ईगो नहीं है। चिल्ड्रन सो ब्यूटिफुल। अच्छा, कोई कह रहे सतयुग में, गोल्डन एज में हो सकता है बहन, अभी कलयुग में इसकी बातें नहीं कीजिए। अगर आप कहते हैं सतयुग, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं दैट रिवर्ड एज, दैट गोल्डन एज, क्योंकि उस समय पर सतयुग था इसीलिए पीपल ईगोलेस थे, या क्योंकि उस समय पर पीपल ईगोलेस थे इसीलिए वो दुनिया को सतयुग कहलाया जाता था? क्या कहेंगे? आई रिपीट माई क्वेश्चन, क्या उस समय पर सतयुग था इसीलिए लोग निरहंकारी थे, ईगोलेस थे, या क्या क्योंकि उस समय पर लोग ईगोलेस थे इसीलिए वो दुनिया सतयुग कहलाती थी? सोच के बताइए। सोच के बताइए, जिस सोच के बताइए, फर्स्ट या सेकेंड, विच ऑफ द टू इज ट्रू? तो आज की दुनिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है? अब बताइए क्यों कहलाती है? क्यों कहलाती है? और अगर इसको हमें बदल करके फिर से सतयुग बनाना है तो हमें क्या करना है, क्या करना है? तैयार हैं? तैयार हैं? यू हैव 3 मिनट्स टू थिंक अबाउट दिस। मन को कहीं इधर उधर नहीं जाने दीजिएगा। एक ही सवाल अपने मन से पूछिएगा कि अगर इस कलयुग को फिर सतयुग बनाना है, एम आई विलिंग टू गो बियॉन्ड माई ईगो?
काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
तो मन क्या कहता है? Is there a will to let go the ego? या लगता है चलो बाकी समय तो जाने दे सकते हैं, इमरजेंसी के लिए थोड़ा रख लेते हैं। क्या कहेंगे? कभी कभी यूज करने के लिए थोड़ा रख दिया, बाकी इट इज ओके टू लेट गो द रिमेनिंग पार्ट, बट थोड़ा थोड़ा तो कभी यूज करने को चाहिए। क्या कहेंगे? ईगो का फॉर्म ऐसा है कि बहुत बहुत हमें धोखे में फंसा देता है। ईगो हमेशा हमें ऐसी फीलिंग देगा कि ये जरूरी है, ये आवश्यक है। इट विल डिस्गाइज इट सेल्फ एज समथिंग विच इज नेसेसरी, और कभी हमको ये रियलाइज नहीं होगा कि इसकी कभी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और दो प्रकार से ईगो जागता, एक होता द ईगो ऑफ सुपीरियोरिटी, और दूसरा उससे भी सूक्ष्म होता द ईगो ऑफ इन्फीरियोरिटी। एंड एज स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हमें हमारी जर्नी ऐसी करनी है कि हम दोनों प्रकार के ईगो से अपने आप को लिबरेट कर दें। मान लीजिए आपने एक बहुत सुंदर, आपके मन में संकल्प था, विचार था कि मुझे एक बहुत ही रॉयल ग्रैंड BMW कार खरीदनी है। आपके मन में ये थॉट है और आप हाँ कुछ 2-3 साल से उस बीज को बहुत अच्छी तरह से पाल रहे हैं, हर प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं। एक दिन आता आप शोरूम में जाकर अपनी कार बुक करा के आते हैं, इन द स्पैन ऑफ अ मंथ और सो आपके पास आपकी मन इच्छित BMW आपके हाथ में है, और जो 3-4 साल से आपका संकल्प था आज आपकी वो डिजायर पूरी हुई है। You take your new BMW on the road और आप ड्राइव कर रहे हैं और आप देखते हैं कि आपके कुछ मित्र आपको देखते हैं, वो वहां पर रोड पर हैं, उनकी नजर आप पर जाती और आपकी नजर उन पर जाती। आप दिल से क्या चाहते हैं? वो आपको देख रहे हैं इसीलिए खुश होते हैं आप, या आपकी कार में आपको देख रहे हैं इसीलिए आप खुश होते हैं? किस बात से खुश होते हैं? आपकी आंखें उनको क्या कह रही है? मुझे देखो कह रही है, मुझे देखो नहीं कह रही है, किसको देखो कह रही है? the subtle ego of superiority. और कैसे पता चले कि ये ego है? आप कहेंगे शायद ये तो बहुत natural है ना, मैं भी खुश हूं नई कार देखकर, लोगों को भी पता चले तो भी मैं खुश हूं, what's wrong in that? बट ईगो की डेफिनेशन है कि ईगो अर्थात एक रॉन्ग इमेज के साथ मैं अपने आप को अटैच कर देता हूं, अपनी गाड़ी के साथ भले वो कितनी भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, अच्छा है आप कर सकते हैं, आप यूज कीजिए, उसमें मना नहीं है, लेकिन जो इसका एक ईगो ऑफ सुपीरियोरिटी नोइंगली या अननोइंगली डिवेलप होता है, वहां हमें अपने आप को एक अटेंशन खिंचवाना है, क्योंकि मान लीजिए जाने अनजाने आपके उस नई बीएमडब्ल्यू को कहीं एक छोटा सा स्क्रैच आ जाता, एक साइकिल वाला आपसे नजदीक से आता और उस साइकिल चलाते चलाते आपकी पार्क की हुई बीएमडब्ल्यू को एक स्क्रैच आ जाता। स्क्रैच किस पर आया और दर्द किसको होता? स्क्रैच किस पर आया और दर्द किसको हुआ? यहां पर हमें ये अंडरस्टैंड करना है द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, कि जीवन में बहुत ऐसी बातें होंगी जो शायद हमारे पसंद के अनुसार नहीं होगी। Humility is accepting that there will be different scenes in my life. कोई scenes ऐसे होंगे जो मुझे पसंद आएंगे, कि मैंने चाहा मुझे एक BMW मिले और मुझे वो मिल गई, लेकिन हमें इस बात को accept करना होगा कि जीवन में कोई scenes ऐसे भी होंगे कि जो मुझे पसंद नहीं होंगे, कि मेरी नई गाड़ी को एक scratch आ गया। लेकिन अगर उससे मुझे दर्द हो रहा है तो मुझे चेक करना है कि कहीं मैंने अपनी आइडेंटिटी को इस लिमिटेड आइडेंटिटी के साथ अटैच तो नहीं कर दिया, बिकॉज इससे हम अपनी वैल्यू को कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? एक बीएमडब्ल्यू की वैल्यू क्या है अगर हम उसको मार्केट वैल्यू के रूप में भी समझते हैं, और एक ह्यूमन बीइंग की वैल्यू क्या है? हमें एक्सेप्ट करना है द वैरायटी सीन्स ऑफ लाइफ एंड द वैरायटी टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट आई गो थ्रू अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ। जब हम इसको एक्सेप्ट करने लगेंगे तो हमें सॉल्यूशंस दिखाई देंगे, ठीक है नहीं होना चाहिए था, इन एन आइडियल सिनेरियो, इन एन आइडियल सीन हम भी मानते हैं कि इतनी वैल्यूएबल व्हीकल है, उसको संभाल हमें पूरी करनी है, उसको ऐसा स्क्रैच नहीं आना चाहिए, इतना उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, मुझे अपना टाइम लगाना पड़ेगा, ये टाइम है, द अदर पर्सन शुड हैव बीन कॉशियस, ये सारी बातें अप्रोप्रिएट है। But what is inappropriate is the pain that I feel when something has happened outside. अर्थात मैंने अपनी आइडेंटिटी को कम कर दिया है, और इससे क्या होगा, क्योंकि मुझे पेन हुआ, मैं उस व्यक्ति से कैसे बिहेव करूंगी जिसकी वजह से स्क्रैच आया है? कैसे बिहेव करूंगी? इशारा कर रहा है कोई, एडमेंस होगा, बॉसीनेस होगी, गुस्सा होगा, और मे बी द पर्सन कुड बी योर ओन चाइल्ड, वो कोई और नहीं है, आपका अपना प्यारा सा बेटा है। एक तरफ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं और एक तरफ वो प्यार की भावना है, सिखाना जरूर है, लेकिन अगर मैंने दर्द महसूस कर लिया तो मैं सिखा नहीं पाऊंगा, मैं रिएक्ट करूंगा। सो लाइफ टीचेस अस मेनी लेसन्स, और वो लेसन जरूरी नहीं है कि हमारे फेवरेबल कंडीशंस में ही हमें सिखाए जाए, ये तो एक एग्जांपल था, लेकिन लाइफ विल टीच अस लेसन्स इन वेरियस सिनेरियोस, पर उन लेसन्स में से मुझे जो मैसेज है उसको कैप्चर करना है और अपनी जीवन रूपी यात्रा को आगे बढ़ाना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हैप्पी अलॉन्ग द जर्नी ऑफ माई लाइफ। और इसीलिए कई बार हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अपनी सुपीरियोरिटी का तो मुझे कोई ईगो नहीं है, ठीक है, आई हैव एवरीथिंग, बट उसका मुझे कोई अभिमान नहीं है। लेकिन एट द अदर एंड ऑफ इट, द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज द ईगो ऑफ इन्फीरियोरिटी, जहां हम अपने मन में ये सोचने लगते, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, या हम सोचते लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे लाइक नहीं करते, दे डोंट वैल्यू माय प्रेजेंस, माना किसी को मेरे लिए कोई कदर ही नहीं है। दिस ये जो विचार है ये अंदर ही अंदर मन को खाने लगते हैं और हमारी जो अपनी एबिलिटी है, हमारी जो अपनी क्वालिटी है उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन यहां मुझे देखना है कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं उसका अप्रूवल मुझे दूसरों से नहीं लेना है, लेकिन उसका अप्रूवल मुझे खुद अपने आप से लेना है। क्या जो कर्म मैंने किया, जो बोल मैंने बोला, जो डिफिकल्टीज से मैं पास हुई उससे मैं खुश रही? डिफिकल्टीज आएंगी, शायद लोग उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, मैंने अच्छा किया वो नहीं रिकग्नाइज करेंगे, इट इज ओके, लेकिन क्या उससे मैंने अपने आप को और प्योरिफाई किया और अपने आप को, मेरा स्पार्कल मैंने बढ़ाया? क्या वो अपॉर्चुनिटी को मैंने यूज किया कि मैं लोगों के दिलों को जीत सकूं? किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि सुरमे की तरह पीसा है हमें हालातों ने, सुरमे की तरह पीसा है हमें हालातों ने, तब जाकर चढ़े हैं लोगों की निगाहों में। डिफिकल्टीज आएंगी, अनप्लेजेंट अपियर होने वाले सीन्स आएंगे, लेकिन उसमें भी मैं अपने सेल्फ वर्थ को अगर मेंटेन करती हूं तो मैं अपने सेल्फ ग्लो को भी बढ़ाती हूं, और ये ग्लो वो स्पिरिचुअल लाइट है, वो मेरा अपना आध्यात्मिक प्रकाश है कि जिससे मैं अपने जीवन को तो एनलाइटन करती हूं, लेकिन अपने जीवन के साथ साथ मैं अनेकों जीवन को भी एनलाइटन करती हूं, बिकॉज पीपल कैन सी दैट कोई विनम्र रह कर के भी जीत सकता है, कोई सभी के दिलों को जीत सकता है। तो ये जो ईगो है जो अपने आप को डिस्गाइज करता है कि मैं बहुत जरूरी हूं, मेरे बिना आपका काम नहीं चलेगा, इस डिस्गाइज को हमें पहचानना है, और इसको पहचान करके हमें इसको, इसके ऊपर जीत पाना है, हमें इसको रिस्पॉन्स देना है कि नो आई विल बी हम्बल। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों के दिलों को जीतना है। पसंद है? पसंद है नहीं? हाँ या ना? हाँ, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ जर्नी जहां पर आपको बहुत वैरायटी एक्सपीरियंसेस होंगे, वो इतना आसानी से भागने वाला नहीं है। कौन? आज आपने सोच लिया ठीक है मैं तो इस पर डटकर विजय प्राप्त कर ही लूंगा, बाहर निकले और किसी ने कुछ कह दिया, फिर जाग जाएगा, फिर आ जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रांग बैटल, लेकिन यहां पर कौन से टूल को मैं यूज करूंगा अपने ह्यूमिलिटी को होल्ड ऑन करने के लिए, वो टूल है माय लव फॉर गॉड। क्या होता, ह्यूमिलिटी अर्थात और कुछ नहीं है, लोगों के दिलों को जीतना उतना मुश्किल नहीं है, बट जब मैं कॉन्स्टेंटली सभी को प्यार दे सकती, कॉन्स्टेंटली सभी के साथ एक ह्यूमिलिटी से, नम्रता से व्यवहार कर सकती, रिस्पॉन्ड कर सकती, तो ऑटोमेटिकली हम लोगों के दिलों को जीत सकते। एक बहुत सुंदर टिप जो हमको मिली अलोंग माई स्पिरिचुअल जर्नी, माई स्पिरिचुअल मेंटर की मैं बात करूं या जो हमें गाइड करने के लिए आपसे भी कल मिले थे दिव्या बहन, उनके साथ हम एक बार एक्सपीरियंसेस कहो या कुछ स्पिरिचुअल इंसाइट्स चाहिए थी, वो पूछ रहे थे, उनसे इंसाइट्स ले रहे थे, और उन्होंने हमें बहुत बहुत इनवैल्यूएबल टिप दी। शी टोल्ड मी कि जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो प्रॉब्लम्स हमारे कार्य से संबंधित है, हमारे डिसीजन मेकिंग से संबंधित है, चाहे वो प्रॉब्लम्स हमारे संबंधों से संबंधित है, हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से पर्टेनिंग है, चाहे वो प्रॉब्लम्स हमारी सेल्फ आइडेंटिटी से है, हमारे भीतर ही एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। शी टोल्ड मी एट द रूट कॉज ऑफ मेजॉरिटी या ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ टूडे इज एसेंस इज कम्स डाउन बॉयल्स डाउन टू वन वर्ड, और वो शब्द है ईगो। और उन्होंने बहुत अच्छी टिप दी कि कैसे हम इसको यूज कर या इसको ओवरकम करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि क्योंकि आज हर किसी के अंदर किसी न किसी मात्रा में ईगो छिपा हुआ है, किसी में कम किसी में ज्यादा, मुझे क्या सावधानी रखनी है, मुझे बस इतनी सावधानी रखनी है कि जब भी मैं किसी के साथ कार्य व्यवहार करती हूं तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा कोई भी रिस्पॉन्स ऐसा न हो जो उसके ईगो को जगा दे। एंड दिस सिंपल टिप गोज माइल्स इन मेंटेनिंग स्मूथ रिलेशनशिप्स। सॉरी, अच्छा भाई बता रहे ईगो मीन्स ईच गोज आउट। हमारे जीवन में फिर हम अकेले ही रह जाते हैं, लोग दूर भाग जाते हैं। तो ये टिप है कि कहीं भी मेरा रिस्पॉन्स किसी को हर्ट करने वाला न हो, उसके ईगो को जगाने वाला न हो, और इतना हम ध्यान रखेंगे तो हमारे सारे रिलेशनशिप्स बहुत स्मूथ, बहुत कॉर्डियल रीति से बढ़ सकेंगे। एक और बहुत सुंदर टिप है कि जितना हम परमात्मा से प्यार रखेंगे तो हमारे भीतर एक बहुत ही स्वीट स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस डेवलप होती है, और जितना हमारा परमात्मा से प्यार होगा और ये स्वीट स्पिरिचुअल सॉफ्टनेस हमारे भीतर डेवलप होने लगेगी। क्यों होती है? बिकॉज अभी हमारा कनेक्शन एक ऐसी अथॉरिटी के साथ है जिसको अपनी अथॉरिटी का कोई होल्ड या ऐसे ईगो नहीं है। वो अथॉरिटी है पर उसको अपनी अथॉरिटी का कोई ईगो नहीं है। जैसे ही मेरा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उस डिवाइन पावर के साथ होता है तो वैसे वैसे माय सोल इज हील्ड फ्रॉम द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ईगो। मुझे एक ऐसा कॉर्नर स्टोन मिल जाता, मुझे एक ऐसा कनेक्शन मिल जाता है कि जिसके ऊपर मैं अपने आप को स्टेबल रख सकती हूं। कभी मेरे मन में ऐसा संकल्प भी नहीं आएगा कि क्या हर समय मुझे ही मरना पड़ेगा। परमात्मा यहां हमें सिखाते हैं कि ऐसे शांत रह लेना, सह लेना, किसी सिचुएशन को संभाल लेना, विनम्र रहना, ये मरना नहीं है, लेकिन सदा के लिए लोगों के दिलों में जीना है। लेकिन इस बात पर हम कब खड़े रह सकते हैं? जब उस परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन है। बड़ी विडंबना है आज के जीवन की कि आज हम कई प्रकार के सोशल कनेक्शंस बनाने में बहुत बिजी हो गए हैं. यस, हमारा सोशल नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. हमारे सोशल कनेक्शन सबसे अधिक से अधिक होने चाहिए. और स्पिरिचुअल कनेक्शन, हाँ जी, हाँ, स्पिरिचुअल कनेक्शंस वीक होते जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि सोशल कनेक्शंस स्ट्रांग होते जाएं. स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रांग स्पिरिचुअल कनेक्शन. द आर्ट ऑफ मेडिटेशन हमको परमात्मा के साथ, वो परमात्मा की जो प्यार के सागर हैं, वो परमात्मा जो हमें सच्चा ज्ञान देते हैं. क्योंकि ईगो क्या करता है, क्या ईगो हमें ब्लाइंड फोल्ड कर देता है, हमें सच से दूर ले जाता है, अंधेरा कर देता है. और परमात्मा के साथ जो हमारा मन का कनेक्शन है, वो हमें सच ज्ञान देता है, वो ज्ञान का प्रकाश हमको मिलता है. और उस ज्ञान के प्रकाश में हम देख पाते हैं कि सच क्या है और असत्य क्या है. परमात्मा के साथ का कनेक्शन हमें इतना भरपूर करता है कि लोगों के एक्शंस पर मेरे रिएक्शंस डिपेंड नहीं करते हैं. पर क्योंकि मेरा उसके साथ एक बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन है, तो अब मैं अपने रिस्पॉन्सेस क्रिएट कर सकती हूँ. दूसरों के रिस्पॉन्सेस के इन्फ्लुएंस से मैं अपने आप को सेफ रख पाती हूँ. कई बार ऐसे भी होता, कहीं कहते मैं कितना भी चाहूं लेकिन फिर भी उसके प्रति अभी मेरे मन में उतना प्यार नहीं जाग पाता. मैं सोचती भी हूं, मैं चाहती भी हूं कि मैं उसके प्रति नफरत ना रखूं, मैं उसके प्रति फीलिंग्स ऑफ लव रखूं, लेकिन कहते हैं कि प्रैक्टिकली बिकॉज आई एम हर्ट, अभी तक मैं वो प्यार या वो रिस्पेक्ट जेनरेट नहीं कर पाती हूं. ऐसे केसेस में भी, ऐसे सिचुएशंस में भी, ये जो हमारा डिवाइन कनेक्शन उस परमात्मा के साथ है, ये हमें हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? मान लीजिए किसी के प्रति मेरे दिल में अभी तक भी इम्प्योर फीलिंग्स आ रहे हैं. आई क्रिएट अ मिड पॉइंट कि इस आत्मा के साथ जो मेरा कनेक्शन है, ये कैसे है. ये आत्मा जो भी है, जैसी भी है, ये भी परमात्मा की संतान है. आफ्टर ऑल चाइल्ड ऑफ गॉड है और मैं भी परमात्मा की संतान हूँ. तो मेरे मन में इस समय जो भावना जागृत हो रही है, मैं अपने मन से ये संकल्प करती हूँ कि आई डोंट वॉन्ट टू रेडिएट हेट्रेड, बट अभी क्योंकि आई एम इन पेन, वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं. बट आई क्रिएट अ मिड पॉइंट, एक फिल्टर कि परमात्मा आपका वो चाइल्ड है, इसीलिए पहले ये फीलिंग्स आप तक पहुँचते, ये एनर्जी आप तक पहुँचती, परमात्मा से वो फिल्टर हो जाती और मैं प्यार नहीं जेनरेट कर पाती. पर फिर भी ये हेट्रेड की फीलिंग्स भी उनको नहीं पहुँचती है. परमात्मा के द्वारा जो मैं प्यार की वाइब्रेशंस क्रिएट करना चाहती हूँ, वही उस आत्मा तक पहुँचती है. When I am able to have a divine connection, तो वो मेरे जो नेगेटिव कनेक्शंस है, वहां पर भी एक इंटरमीडिएट क्रिएट करता है और मेरी नेगेटिव वाइब्स को वो फिल्टर करता है. और साथ साथ अगर किसी के मेरे प्रति ऐसे नेगेटिव वाइब्स है, तो उनसे भी परमात्मा के साथ का कनेक्शन मुझे सेफ रखता है. क्योंकि आई एम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी, और जब मैं उस हाईएस्ट अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस में हूं, तो और कोई पावर मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है. और इस प्रकार से द आर्ट ऑफ मेडिटेशन मुझे हेल्प करता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, कि उस सुप्रीम उस डिवाइन कंपेनियन के साथ मैं हमेशा कनेक्टेड रहती हूँ और उसके साथ कनेक्शन मेंटेन करते हुए सभी के साथ जो मेरे रिलेशन है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तब मेरा विजन हर एक के प्रति उसकी क्वालिटी के प्रति जाता कि दैट सोल कैन बी डिफरेंट बट ओरिजिनली वी आर बीइंग्स ऑफ लव, ओरिजिनली वी आर बीइंग्स ऑफ पीस। हमारे ओरिजिनल फॉर्म में हम बहुत प्योर है और ये प्योरिटी हम तब देख पाते हैं जब पहले परमात्मा के कनेक्शन में हम अपनी ओरिजिनल प्योरिटी को डिस्कवर करते हैं। एंड दिस इज वेयर द आर्ट ऑफ मेडिटेशन हेल्प्स अस। द आर्ट ऑफ मेडिटेशन हमें हेल्प करता है हमारे जीवन के पर्पस को फाइंड आउट करने के लिए, और तब हम ये जान लेते हैं कि मेरे जीवन का पर्पस दूसरों पर अपना अधिकार जमाना नहीं है, लेकिन अपनी निर्माणता से दूसरों के दिलों को जीतना है। क्योंकि कहते हैं सिर्फ अपने लिए ही जिए तो क्या जिए, वो तो हर कोई जीता है। सिर्फ अपने लिए ही जिए तो क्या जिए, जिंदा दिली का तकाजा है कुछ औरों के लिए भी जिए। सो विद दीज पॉजिटिव नोबल थॉट्स, लेट्स गो विद इन अगेन, लेट्स एक्सप्लोर द प्योर बींग्स, द प्योरिटी दैट रिजाइड्स विद इन ईच ऑफ अस, और आइए कुछ मिनटों के मेडिटेशन से उस परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट करें कि जो हमें हेल्प करेगा ईगो की इम्प्योरिटी को क्लेंस करने में और अपनी ओरिजिनल प्योरिटी को रिडिस्कवर करने में। तो आइए एक बहुत सुंदर स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन करते हैं। शांत, स्थिर, अलर्ट होकर बैठ जाएं और अपने भीतर की दुनिया को देखें। इस जीवन रूपी यात्रा में मैंने क्या पाया और क्या खोया, कहीं मैंने लिमिटेड प्राप्तियों के लिए बहुत इनवैल्यूएबल कीमत तो नहीं चुका दी, थोड़ा सा मान प्राप्त करने के लिए कहीं कभी किसी का अपमान तो नहीं कर दिया, अपनी शान दिखाने के लिए कहीं औरों को परेशान तो नहीं कर दिया, परमात्मा से जो मुझे क्वालिटीज मिले, स्किल्स मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, उस प्रभु प्रसाद को कहीं मैंने अपना अभिमान तो नहीं बना दिया, चेक करें अपने जीवन को। अपनी जीवन यात्रा के पर्पस को फिर से जागृत करें। इस जीवन यात्रा में मैं अपनी बात जताने के लिए नहीं आया, वास्तव में इस जीवन यात्रा में अपनी क्वालिटीज दूसरों के साथ बांटने के लिए मैं आया। खुश रहना, खुशी बांटना, स्वमान में रहना, सम्मान सर्व को देना, ये मेरी जीवन यात्रा का पर्पस है। पूछे अपने आप से, मेरा जीवन कितना पर्पसफुल है? और आज संकल्प लेंगे कि मुझे जो कुछ भी करना पड़े, झुकना पड़े, झुक जाएंगे, मुड़ना पड़े तो मुड़ जाएंगे, कुछ सुनना पड़े तो सुन लेंगे, लेकिन इस संसार में प्यार का प्रकाश जरूर फैलाएंगे। माफ करना पड़े तो माफ कर लेंगे, माफी मांगनी पड़े तो मांग लेंगे, लेकिन लोगों को अपने दिलों से दूर नहीं होने देंगे। इस प्योर एनर्जी को महसूस करें, प्योर संकल्प में कितनी प्योर एनर्जी है। मुझे इस प्योर स्टेट में देखकर पिता परमात्मा भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। महसूस करें परमात्मा के प्यार की किरणें मुझे एम्ब्रेस कर रही है। जो आज मैंने संकल्प लिया है उसमें मुझे परमात्मा की मदद मिल रही है, और परमात्मा के साथ के इस डिवाइन कनेक्शन को सदा मेंटेन करते हुए आज से मेरी जीवन यात्रा का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल होगा निर्माणता, नम्रता, विनम्रता। अपने आप को ये ब्यूटीफुल गिफ्ट आज हम देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। So wishing you a beautiful journey ahead. Thank you.
आप सभी ने वेलकम नहीं बोला.